पृष्ठ संख्या 177, अध्याय 20, खाली भरी का सौंदर्य। तबला पखावज में ताली, काल और खाली भरी की कल्पनाएं मानो तबला वादन की रक्त वाहिनियां हैं। चाहे सीधा ठेका हो या उसका विस्तार, इन कल्पनाओं की अनुभूति हमें वादन में क्षण क्षण प्रतीत होती है। ये कल्पनाएं ताल वादन में इतनी दृढ़ हो गई हैं कि आज उनका उपयोग किए बिना तबला वादन और उसका विस्तार करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इन कल्पनाओं का उद्गम कैसे हुआ होगा और उसका अधिकाधिक उपयोग कैसे हो सका होगा, इसका विचार करना उद्बोधक होगा। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि छंद के रूप में अविकसित ताल प्रथमतः हाथों से व्यक्त हुआ या उसे अविकसित वाद्य पर पहले बजाया गया, किंतु मोटे तौर पर अगर हम यह मान लें कि ताल ताली से व्यक्त किया गया, संगीत का काल एकक है, तो संभवतः ताल को ताली से व्यक्त करने की परंपरा ताल वादन जितनी ही या उससे भी पुरानी होगी। तबले से संबंधित पुस्तकें पढ़ते समय यह दिखाई देता है कि इस महत्वपूर्ण वादन अंग पर अनुभूत होने वाली खाली भरी के संकल्पना को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर पहले हम मात्र ताल को व्यक्त करने के दौरान आने वाली ताल संकल्पना का विचार करेंगे। शुरू में एकाद सांगीतिक रचना संभवतः निश्चित कालखंड से संबद्ध करके गाई जाती होगी और उस समय उक्त कालखंड को अचल रखने के लिए तालियों की सहायता से उसका संचलन होता होगा। उसके साथ वह रचना गाई जाती होगी। इसी काल खंड को जिसे ताली से व्यक्त होने के कारण हम ताल कहते हैं, ताल वाद्यों पर विविध आघातों के जरिए दिखाया जाने लगा और हम उसे ठेका के नाम से संबोधित करने लगे, तथा ताल अमूर्त रचना है और उसका व्यक्त रूप है ठेका। जिस प्रकार मानव के विविध स्वरों की खोज करके स्वर सप्तक का आविष्कार किया और उसके आधार पर आज का राग संगीत खड़ा हो गया, उसी प्रकार ताल वाद्य पर भिन्न भिन्न उंगलियों से एवं पंजे से विभिन्न जगहों पर आघात करके रिक्त या संयुक्त विविध ध्वनियां ताल व्यक्त करने के लिए अथवा उसका विस्तार करने के लिए उपयोग में लाई जाने लगी। पृष्ठ संख्या 178। अब हम ताली काल का उद्भव कैसे हुआ इसका विचार करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम त्रिताल की रचना को लें। इस ताल में चार चार मात्राओं के चार खंड होते हैं। इन्हें अगर हमने ताली की सहायता से व्यक्त करना तय किया होता तो वह रचना ताली 1 2 3 4, ताली 5 6 7 8, ताली 9 10 11 12, ताली 13 14 15 16 इस प्रकार बन गई होती। इस प्रकार चार तालियों से व्यक्त किया गया यह ताल 16 मात्राओं की आकृति की कल्पना नहीं दे सकता और 16 मात्राओं के आधार पर आधारित रचना गाते समय कलाकार को उस ताल प्रदर्शन से कोई भी मदद न मिलती और फलतः वह झमेले में पड़ जाता। इसलिए एक सांगीतिक सुविधा के तौर पर तीसरी ताली के बदले काल दर्शाने का प्रबंध किया गया होगा, जिसे शास्त्र में निःशब्द क्रिया कहा गया है। फिर यह बात भी हमारे ध्यान में आ जाएगी कि काल दर्शक हाथ को दूर हटाने की क्रिया से नीरी ताली और खाली की सहायता से त्रिताल की रचना की अनुभूति होने लगी। श्री शुकदेव नारायण सिन्हा ने अपनी संगीत प्रकाश पुस्तक में ताली काल के संबंध में निम्नांकित विचार व्यक्त किए हैं। उनकी राय में ताल के मूल खंड ताली से ही व्यक्त होते हैं। त्रिताल में तीन तालियां, चौताल में चार तालियां होती हैं। अगर दो तालियों के बीच का अंतर ज़्यादा हो तो वह खंड विभाजित किया जाता है और उस विभाजित खंड का दूसरा भाग खाली की क्रिया से दिखाया जाता है। हम यहाँ चौताल का उदाहरण लें। उक्त लेखक की राय में चौताल के खंड निम्नलिखित मात्राओं के होते हैं, चार चार दो दो। पहले दो खंड बड़े आकार के होने से बिना हिले ताली अचूक दी जा सके, इसलिए उन दोनों खंडों को दो दो मात्राओं में विभाजित करके उस खंड की दूसरी दो मात्राओं का उपखंड सुविधा के लिए खाली की क्रिया से गिनने की प्रथा शुरू हो गई होगी। इसी नियम के अनुसार त्रिताल के जो मूल तीन खंड हैं वे इस प्रकार हैं, चार आठ चार, और यहाँ दूसरे खंड की आठ मात्राएं सुलभता से गिनी जा सकें इसलिए उसको विभाजित करके उस खंड को दूसरी चार मात्राओं के उपखंड को खाली की क्रिया से दिखाना आरंभ हुआ। उक्त लेखक की राय में तो खाली की योजना शुरू में केवल हाथ से कालखंड गिनने की सुविधा के तौर पर की गई होगी। कर्नाटकी संगीत में काल या खाली की कल्पना भी ताल को ठीक तरह से गिना जा सके इसलिए विसर्जितम हस्तक्रिया वहाँ भी बताई गई है, और खाली यानि जोर रहित आदि कल्पना अभिप्रेत नहीं है, बल्कि उसे ताल को अचूक रूप में गिना जा सके इसी उद्देश्य से रखा गया है। मतलब यह है कि दाक्षिणात्य संगीत में भी खाली सदृश विसर्जितम क्रिया सांगीतिक गणन सुविधा के तौर पर ही प्रयुक्त की गई है और आज भी की जा रही है। पृष्ठ संख्या 179। इस संदर्भ में ताली काल की संकल्पना का ठीक अध्ययन करने के लिए हम यहाँ त्रिताल का ठेका लें। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इस ठेके के बदले यदि त्रिताल के ठेके को हमने धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा इस प्रकार बजाया होता तो हमारे लिए यह जानना मुश्किल हो जाता कि किस अक्षर पर कौन सी मात्रा है और सम पर सम को पहचान कर अचूकता के साथ सम पर आना संभव न होता। फलतः गायक वादक पशु पेश में पड़ जाते। ऐसी स्थिति पैदा न हो इसलिए रचनाकारों ने सांगीतिक सुविधा के तौर पर तीसरे खंड में धा तीन तीनता अक्षर रखे और चौथे खंड में ता धिन धिन धा अक्षर रखे। इस ध्वनि विविधता के फलस्वरूप सम तथा अन्य मात्रा स्थानों को पहचानना आसान हुआ, ताल में गाना बजाना सुविधाजनक बन गया। लगता है कि ठेके की यह ताली और खाली की कल्पना स्वरों के आरोह अवरोह की क्रियाओं से ही सूझ गई होगी। सारे ग म प ध नि सा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, सा नि ध प म ग रे सा, धा तीन तीन ता, ता धिन धिन धा। पंडित नारायण जोशी ने अपनी आदिताल पुस्तक में उपर्युक्त निष्कर्ष यद्यपि न निकाला हो तो भी उन्हें दोनों में जो साम्य दिखाई दिया उसे उन्होंने उक्त पुस्तक में बताया है। उसमें उन्हें एक ही रचना के दो रूप स्वर और लय दिखाई दिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वादकों ने ताल वाद्य पर विविध स्थानों पर उंगलियों एवं पंजे की सहायता से विविध ध्वनियां खोज निकाली। उनका उपयोग प्रथम ठेके के लिए विविध अक्षरों को व्यक्त करने के लिए किया गया। इन अक्षरों की विविधता के फलस्वरूप ठेका एवं ताल का आकलन संभवतः आसान बना होगा। अक्षरों में यह जो विविधता पैदा हो सकी उसका एक प्रमुख कारण बाएं के घुमारे का उपयोग करके इकहरी या संयुक्त ध्वनि पैदा करना और इसके विपरीत घुमारे विहीन अक्षर बजाना है। पृष्ठ संख्या 180। ठेके के शब्दों के चुनाव में ताली की जगह संभवतः बाएं के घुमारे युक्त अक्षरों को चुना गया होगा और काल के अक्षर बाएं विरहित रखे गए होंगे। इसका प्राथमिक उद्देश्य अक्षर विविधता से ताल, उसकी मात्राएं आदि को आसानी से पहचानना ही रहा होगा। रचनाकारों ने महसूस किया होगा कि बाएं के घुमारे से युक्त अक्षर धा, धिन, घे आदि ठोस भरे हुए प्रतीत होते हैं, तो ता, तिन आदि अक्षर खोखले प्रतीत होते हैं। यह विरोधी ध्वनि निर्मिति उन्हें ताली अनुगामी और खाली अनुगामी खंड व्यक्त करने के लिए उपयुक्त प्रतीत हुई हो। आगे चलकर इस कल्पना का अच्छी तरह विकास होकर विविध ताल और उसके ठेके ताली खाली के तंत्रानुसार रचे गए। ताल एवं ठेका के रचनाकार मात्र व्याकरण नहीं बल्कि सौंदर्य पूजक, प्रतिभावान एवं कल्पक भी रहे होंगे। इसीलिए उन्हें लगा कि खाली को केवल बायां विरहित अक्षरों का अंतर्भाव होने वाले खाली दर्शक खंड हैं ऐसा न मानकर उन खंडों में प्रमुखतः बायां विरहित अक्षर हो ऐसा मानना चाहिए। ताल सुंदर लगे इसलिए त्रिताल के काल दर्शाने वाले इस तीसरे खंड का पहला अक्षर धा उन्होंने घुमारे युक्त रखा और खाली दर्शाने वाले चौथे खंड का पहला अक्षर ता रखा। ये विस्तारित भरी एवं खाली के अक्षर नौवीं मात्रा का धा और तेरहवीं मात्रा का ता निम्नांकित परिणामों को साधते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम यह कि जिस ताल को हम वर्तुलाकार मानते हैं उस वर्तुलाकृति की अनुभूति नौवीं मात्रा पर के धा और तेरहवीं मात्रा पर के ता अक्षर से होती है। मुझे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा रचना एक रेखात्मक रचना प्रतीत होती है। तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, धा तीन तीन ता धिन धिन धा, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह रचना पीछे घूमने वाली किंतु द्विरेखाकृति प्रतीत होती है। तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता धिन धिन धा रचना वर्तुलाकृति प्रतीत होती है, क्योंकि अ वह दो बिंदुओं पर पीछे फिरती सी दिख पड़ती है। ब त्रिताल में जो चार खंड हैं वे नौवीं और तेरहवीं मात्राओं पर क्रमशः भरी और खाली अक्षरों के कारण एक दूसरे से श्रृंखला जैसे गुथे हुए भासमान होते हैं। इस कलात्मक गुंफन के कारण यह रचना पहली मात्रा तक वापस आने के लिए पहली मात्रा के वर्तुलाकार घूमती हुई प्रतीत होती है। पृष्ठ संख्या 181। यह सब विवेचन यह समझा देने के लिए है कि खाली भरी की कल्पनाएं कैसे जड़ पकड़ गई हैं। एक बार इन कल्पनाओं को स्वीकारने के पश्चात हम जब इस ताल के ताली खाली युक्त खंडों का पुनः अध्ययन करने लगते हैं तो हमारे ध्यान में यह बात आ जाती है कि ताली युक्त खंडों के अक्षर सबल हैं तो काल युक्त खंडों के बलहीन। संक्षेप में मैं यह समझना चाहता हूं कि ठेके में अक्षरों की विविधता पैदा करने के लिए और उसके माध्यम से काल दिशा दर्शाने के लिए खाली की कल्पना का विशेष तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हुआ। सौंदर्यवादी चिंतनशील कलाकार बाद में इस खाली भरी युक्त ध्वनियों से निर्माण हुए ठेके में और विविध रचनाओं में विविध सौंदर्य तत्व देखने लगे, जो इस प्रकार है। पहला, नाद विविधता। दूसरा, विरोधी नाद संगति। तीसरा, अनुशासनबद्ध वादन। चौथा, मानवीय श्वास उच्छ्वास की अनुभूति। पांचवा, इस तत्व के योजनापूर्ण प्रयोग से विस्तारक्षम रचना का भाषालंकार युक्त दो चरणों के पद्य में परिवर्तन। छठवां, कलात्मक अपेक्षा पूर्ति की सातत्यपूर्ण अनुभूति। सातवां, पुरुष प्रकृति तत्व के द्वैतवाद की प्रतीति। इस सबके कारण खाली भरी तत्व का इस्तेमाल तबला वादन के प्रत्येक अंग, प्रत्येक रचना, प्रत्येक विस्तार में होने लगा है और आज खाली भरी के बिना तबला वादन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। खाली भरी की कल्पना का सौंदर्यपूर्ण प्रयोग आज के तबला वादन में इस प्रकार दिखाई देता है। और खाली भरी के कारण निर्मित इस नाद विविधता को दिल्ली और अजराणा घराने में महत्वपूर्ण तंत्र माना जाने लगा और उन घरानों में रचना की खाली भरी करना आवश्यक अनुशासन का एक अंग ही बन गया। ब, ठेका वर्तुलाकार होता है और उसके कारण उसमें निहित खाली भरी का भी एक लुका छिपी का क्रम पैदा होता है। इस क्रम के जरिए ठेके के आवर्तनों के दौरान भरी के अक्षर समूह के पश्चात खाली युक्त अक्षरों की अपेक्षा पैदा होती है और खाली के पीछे पीछे भरी युक्त अक्षरों की अपेक्षा पैदा होती है। पृष्ठ संख्या 182। सभी कलाओं में, विशेषतः संगीत कला में, कलात्मक अपेक्षा पैदा करना या होना और उसकी पूर्तता करना या होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण सौंदर्य तत्व माना जाता है। उदाहरण के लिए षड्ज लगाना, सम पर आना इत्यादि। अपेक्षा निर्मिति एवं उसकी पूर्तता के तत्व की प्रतीति खाली भरी युक्त प्रस्तुतिकरण में होती है। फिर वह प्रस्तुतिकरण चाहे ठेके का हो या ताल के विविध रचनाओं का, पेशकार, कायदा या रेला की रचना प्रथमतः खाली भरी तत्वों के कारण दो पंक्तियों में प्रयुक्त होती है और उसे पद्य का रूप प्राप्त होता है। इस रचना का भरी का पलटा बजाते ही जानकारों की उसी बल का खाली स्वरूप सुनने की इच्छा बढ़ जाती है और उसे वैसा बजाया जाने पर उनको अपेक्षा पूर्ति का सुखद आनंद प्राप्त होता है। इस खाली के बाद भरी का बल बजाते समय पुनः अपेक्षा पूर्ति का आनंद प्राप्त हो सकता है, किंतु उस पलटे का केवल अपेक्षित भरी युक्त पुनर्वादन होगा ही सो बात नहीं। अनेक बार अगले नए पलटे के विषय में रसिक श्रोताओं के मन में कुतूहल पैदा हुआ होता है, किंतु यह नया पलटा होता है सिर्फ भरी युक्त शब्दों का ही, क्योंकि भरी के बाद खाली का पलटा आने ही वाला है। कला के प्रस्तुतिकरण में अपेक्षा पूर्ति जितना ही कुतूहल निर्मिति करना एवं उसकी पूर्ति करना एक और सौंदर्य तत्व माना जाता है, यहाँ नए पलटे के स्वरूप के विषय में श्रोताओं के मन में कोई अपेक्षा नहीं होती और यह नया पलटा कैसा होगा इसी प्रश्न का कुतूहल उनके मन में होता है। ऐसा पलटा जब कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है तब उन्हें कुतूहल की समाधान पूर्ति का आनंद मिलता है। क, किसी भी संबद्ध स्वरूप की रचना के प्रति आकर्षण मनुष्य के मन में स्वभावतः होता है। मनुष्य का दो पैरों से चलना, दौड़ना, पक्षियों का दो पंखों से उड़ना, जानवरों का चार पैरों से चलना और दौड़ना, सुराही का दो समान गोलायुक्त आकार आदि संबद्ध रूप मनुष्य के लिए परिचित है, और इस संबद्धता के निकट सहवास से उसे वह संबद्ध रचना सुंदर प्रतीत होने लगती है। पेशकार, कायदा, रेला रचनाओं के खाली भरी युक्त द्विपंक्ति रूप में भी संबद्धता का तत्व स्थूल रूप में समाया हुआ है, और वह रसिक को सुख प्रदान करता है। ड, खाली भरी का तंत्र रिवाज, शिक्षण, संस्कार, घराने की तालीम और अनुशासन आदि के जरिए हम पा सकते हैं, परंतु दिल्ली अजराणा घराने के कुछ विचारवान सौंदर्यवादी कलाकारों ने अपेक्षा पूर्ति के तंत्र को धक्का देने वाले कलात्मक अपेक्षा भंग के तत्व के जरिए रसिक श्रोताओं को आश्चर्य मिश्रित आनंद का आस्वादन देने वाले नवीन तत्व का अवलंबन किया। उदाहरण के लिए यह कायदा देखिए, घीना धागेन धात्रक धागेन धात्रक धातिधा घीन तीनाकिन ताके तीरकित घीना धागेन धात्रक धातिधा घीन तीनाकिन तीन तीनाकिन ताके तीरकित ताके तीत ताके त्रक तीना किड़नक त्रिकिट तकता त्रिकिट घीना धागेन धात्रक धातिधा घीन धीना घीन। पृष्ठ संख्या 183। यहाँ काल में अलग ही योजना करके श्रोता का कलात्मक अपेक्षा भंग किया गया है। ताल रचना के लिए समांतर रूप में अनुकूल खाली भरी का तत्व ठेके में तथा विस्तारक्षम रचनाओं और उनके विस्तार में हम पाते ही हैं, किंतु ताली युक्त भरी के खंडों में ही भरी खाली के तत्व का प्रयोग और काल युक्त खंड में खाली भरी के तत्व का प्रयोग करके उन दो चरणों के खाली भरी युक्त शब्द समूह का समन्वय निर्माण करने से भी सौंदर्य पैदा होता है। प्रतिभावान कलाकार अत्यंत कम शब्दों में कभी कभी एकाध अक्षर की सहायता से भी खाली भरी तत्व की कलात्मक प्रतीति करा देते हैं और उसके जरिए सौंदर्य पैदा करता है। उदाहरण, धागे न तिन्न धाआ घे घे नक धिन धा घे घे नक धिन। कायदा, इस कायदे में तीन खाली दर्शक अक्षर को भरी के शब्दों में गूंथा गया है, फलतः निराला ही सौंदर्य पैदा करता है। उस्ताद इनाम अली प्रसिद्ध धातित धातित कायदे का विस्तार करते समय खाली भरी प्रयोग का एक अनोखा ही आनंद प्रदान करते थे। निम्नांकित उदाहरण है, धातित धातित धाधा धातित ताता तातित धातित धातित धाधातित धागे दीनाकिन तातित तातित ताता तातित धाधा धातित 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 धाधातित धागे धीनाकिन। खाली का अक्षर बहुधा पंजे के सपाट हाथों से की ध्वनि निर्माण करने वाली आघातों से निकलता है। दिल्ली और अजराणा घराने में यह की हाथ की ढीली मुट्ठी के आघात से निकालने की पद्धति है। खाली क्रिया का नजाकत के साथ दर्शन कुछ कलाकार चुटकी द्वारा भी कराते हैं। पृष्ठ संख्या 184। अलग अलग तालों में जब तबला वादन प्रस्तुत होता है तब उन तालों की मात्राएं, खंड, खाली क्रिया आदि का संपूर्ण विचार करके खाली भरी की जाती है। सम मात्राओं के ताल की खाली भरियों का स्वरूप अलग और विषम मात्राओं की खाली भरी के नियम अथवा संकेत अलग। उसी प्रकार रूपक ताल में खाली भरी की प्रस्तुति और भी अलग तरीके से होती है। ग, रेला और रौ बजाते समय गतिमानता अक्षरों की अविरत दौड़ और अक्षरों का गूंज द्वारा प्रस्तुतीकरण करना वादक का प्रमुख उद्देश्य होता है। फलतः रेला के वादन में अविरतता के साथ भरी बजती है और उसी अविरतता के साथ खाली भी बजती रहती है। धा तिरकिट तक अक्षर भरी के खंड में बजते समय मौखिक रूप में की और क गे ध्वनि से कह कर ही बजाना होता है। संक्षेप में रेलू में खाली भरी के निकास की अलग ही परंपरा है। गत टुकड़े जैसी निबद्ध रचनाओं में भी खाली और भरी के शब्दों या अक्षरों का कलात्मक प्रयोग किया जाता है, जिससे नाद सौंदर्य निर्माण होता है। लेकिन इन रचनाओं में किया गया प्रयोग विस्तारक्षम रचनाओं में किए गए सूत्रों की अपेक्षा अलग तरीके से होता है। वहाँ अपेक्षा निर्मिति और पूर्ति का महत्व होता है। तो गत टुकड़ों में ध्वनि विविधता और विरोधी ध्वनि संगति के तत्व की प्रतीति होती है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए शब्द देखिए। तकधिन घेन तर किट तकता कत घेन तरान धा दिनता धा ती धा इत्यादि।